नमस्कार दोस्तों, नियोग्राफ्ट हेयर क्लिनिक में आपका स्वागत है। ये जनरल गाइडलाइंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी जब भी आप हेयर फॉल का ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ के चलिए कि हेयर फॉल को ऐसे एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम ना समझिए कि बस सिर्फ हेयर फॉल है और बालों के ऊपर मेरे को ध्यान देना है, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जब भी मैं एडवाइस करता हूँ, मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ कि लाइफ स्टाइल से लेके, अपने खाने पीने से लेके, आसपास की स्ट्रेस से लेके, नींद से लेके, हर चीज़ के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अगर बिना स्किन की डिज़ीज़ के, चमड़ी की कोई डिज़ीज़ नहीं है और हेयर फॉल हो रहा है, तो समझ के चलिए कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल में, खाने पीने में, आपके स्ट्रेस लेवल्स में, स्लीप में, कहीं ना कहीं कोई ऐसी दिक्कत है जो पूरी बॉडी को इन्फ्लुएंस कर रही है और वहाँ से प्रॉब्लम आपकी सुपरफिशियली जो आपके सामने आई है। तो हेयर फॉल को जो सामने आई प्रॉब्लम है, इसको एक सिम्टम समझिए, इसको लक्षण समझिए। ये बीमारी नहीं है आपकी, ये एक लक्षण है, एक सिंपल सा सिम्टम है जो आपकी अंदर कोई डीप बीमारी है उसका ये आपके सामने आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि अगर हाइपोथायराइड है, थायराइड अगर लो चला गया है तो आपको हेयर फॉल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर थायराइड ज़्यादा हो गया है तो भी काफ़ी केसेस में थायर आपको ये हेयर फॉल देखने को मिलेगा। अगर बॉडी में विटामिंस की कुछ कमी हो गई, जैसे विटामिन डी कम है, आयरन कम है, तो भी हेयर फॉल देखने को मिलेगा। अगर कोई फिजिकल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस आपको हुई है, एग्जैक्टली 3 से 4 महीने के बाद आपको हेयर फॉल देखने का मिलेगा। जैसा कि स्टूडेंट्स के केसेस में हम देखते हैं कि जब भी उनके एग्जामिनेशन होते हैं, 3-4 महीने के बाद जो वल्नरेबल स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी बॉडी में कहीं ना कहीं कोई वीकनेस है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, उनके केसेज में हेयर फॉल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी हेयर फॉल हो तो थोड़े सचेत हो जाइए, लाइटली ना लीजिए, इसको ऐसे समझ के चलिए कि मेरे को पूरा अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, तभी ये हेयर फॉल ठीक होगा और तभी ओवरऑल हेल्थ के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। आप एक चीज़ नोट करके चलिएगा, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है और कोई बहुत प्रोमिनेंट रीज़न सामने नहीं आ रहा, तो आप देखेंगे कि बहुत हेल्दी भी कभी फील नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसे समझ के चलिएगा। अब कहना मैं क्या चाहता हूँ कि आप न्यूट्रिशियस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट वो होती है जो हम घर में बनाते हैं। घर में जो हम खाना बनाते हैं, ऑब्वियसली उसके अंदर ऐसा खाना तो नहीं हम बनाते कभी भी घर में जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा का मतलब मैदे से बनी हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ऐसी हम चीज़ें आजकल अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारा अवेयरनेस का लेवल अभी इतना अच्छा हो चुका है कि हम ऑटोमेटिकली इन चीज़ों से दूर रहते हैं। जो लोग आईटी में हैं या किसी वजह से घर से दूर हैं, उनको बाहर का खाना पड़ता है, वहाँ मैं मजबूरी समझ सकता हूँ कि आपको प्रॉपर शायद न्यूट्रिशन बाहर पके हुए खाने में ना मिले। उसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय आप अपने आप कर लें। अपने पास प्रोटीन, जो पैक्ड प्रोटीन होती है अच्छी कंपनी की, वो आप अपने साथ रखें। आप वे प्रोटीन भी ले सकते हैं या एग मिल सकते हैं, एग यूनिवर्सली हर जगह पे अवेलेबल है। 2 एग मॉर्निंग में और 2 एग इवनिंग के अंदर आपको अच्छी सपोर्ट दे के रखेंगे, अलॉन्ग विद जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो भी आपकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। विटामिन ए चला जाएगा, विटामिन डी चला जाएगा और साथ में ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ आयरन और कैल्शियम भी चला जाएगा। तो एग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, वो ज़रूर लेना चाहिए। एग अगर नहीं ले सकते कुछ वजह से, जैसे कि कुछ वेजिटेरियन लोग होते हैं, प्योर वीगन्स होते हैं, उनके केस में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप पनीर ले लीजिए या सिंथेटिक प्रोटीन जो बाहर से आपको मिलता है। सिंथेटिक कहना गलत होगा, बट जो बाहर से आपको पैक्ड प्रोटीन मिलता है वो आप एक बार ले लीजिए, मिल्क के साथ मिक्स करके ले लीजिए। पनीर आप ले सकते हैं, साथ में आप बादाम ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, जो भी किडनी की शेप में बीन्स होती हैं, बीन्स का आप अच्छे से सेवन कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छा प्रोटीन मिलेगा। चिया सीड्स ले सकते हैं। आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करके अपना एक डाइट स्केड्यूल ऐसा बना लीजिए जिसमें आपको ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रोटीन ज़रूर मिले, ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आजकल वो फ्रूट्स नहीं आ रहे जिनको हम ये समझें कि देखिए मैंने 2 सेब दिन में खा लिए तो पता नहीं क्या किस तरीके का मैंने कुछ ज़बरदस्त ऐसा कोई फूड इंटेक ले लिया जिससे सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, या कुछ भी फॉर दैट मैटर। फ्रूट में अभी सिर्फ और सिर्फ मिठास रह गई है, उसकी वैल्यू तभी है जब आप बिल्कुल सोर्स के नज़दीक हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चंडीगढ़ या पंजाब में हिमाचल का फ्रेश हमें सेब मिल जाता है तो उसकी कुछ वैल्यू बनती है, पर अगर आप समझते हैं कि पंजाब वाले एरिया में रह के आपको केले से, बनाना से कोई न्यूट्रिशन मिलेगा तो आप भूल जाइए, क्योंकि बनाना आपको महाराष्ट्र से चल के आता है, कच्चा तोड़ा जाता है पेड़ों से, फिर उसको मसालों में पका के आपको पेश किया जाता है। मैंगो भी आपको, आप अपने आसपास की रीजन देखिए, जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे कौन सा फ्रूट बहुत ईजीली मिलता है आपको और कम प्राइस में मिलता है, वही फ्रूट आपके लिए फ़ायदेमंद है। अनाप शनाप ऐसे बहुत महंगे फ्रूट लेके ख़रीद के खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो पैसे की वेस्टेज है। उसकी बजाय आप सप्लीमेंट ले लें, एटलीस्ट रेगुलेटेड सप्लीमेंट्स के अंदर जो रिक्वायर्ड मल्टीविटामिन्स हैं, जो ऊपर क्लेम किया गया, वो तो आपको मिल रहा है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। और जहाँ तक न्यूट्रिशन की और फर्दर बात है, तो बादाम एक अच्छा सोर्स है। मैं काजू को नहीं कहूँगा क्योंकि उसको पकाने में बहुत भयंकर तरीके से पेस्टिसाइड यूज़ किया जा रहा है आजकल, उसकी बीमारियाँ बहुत लगती हैं। अंजीर एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप ले सकते हैं, जो मीठी होती हैं, पकी हुई होती हैं, किशमिश होगी, मिनरल्स बहुत होते हैं उसके अंदर। अखरोट हो गया, अच्छी चीज़ है, वो ले सकते हैं आप। नारियल का पानी ले सकते हैं, बट उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें प्रोटीन या किसी और चीज़ का फ़ायदा आपको नहीं होता है ना। तो एज सच फ्रूट्स के अंदर कोई बहुत ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी या कि बहुत सेहत वाली चीज़ आपको नहीं मिलेगी। बजाय उसके आप सप्लीमेंट्स पे फोकस करें, जो टारगेटेड चीज़ें आपको चाहिए वो लें। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तब भी विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई, फिश ऑयल, ये सब चीज़ें रेगुलरली कंज्यूम करते रहें, या फिर जो सीड्स होती हैं, अगर आप वीगन हैं तो फिर सीड्स का कंजम्पशन रेगुलर बेसिस पे डेली कीजिए। पंपकिन सीड्स स्पेसिफिकली बालों के लिए अच्छी मानी जाती हैं, इनमें एक नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर होता है। मेल पैटर्न बॉलनेस के अंदर पपाया सीड्स का अच्छा रोल देखा गया है। साथ में जो हल्दी होती है, टर्मरिक होती है, आधा चम्मच हल्दी अगर आप दूध में मिक्स करके ले लेंगे, दूध में फेंट के ले लेंगे, आपको बहुत फ़ायदा करेगी। इन्फ्लेमेशन को बॉडी में वो रिड्यूस करती है, प्रोवाइडेड हल्दी ओरिजिनल है और असली है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ जो गांठ वाली हल्दी होती है, कच्ची हल्दी होती है, मार्केट में आपको मिलती है, उसको ग्रेट कर लीजिए, पीस लीजिए, उस हल्दी को आप इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रहेगा। या उस हल्दी को सुखा के, मार्केट से सूखी हल्दी ला के खुद पिसवा के अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो हल्दी भी आपको ओरिजिनल जो है अपना फ़ायदा वो ज़रूर देगी। मेथी के सीड्स एल्कलॉइड होते हैं, उसमें बहुत अच्छे वाले एल्कलॉइड्स होते हैं, तो उनका आप आधा चम्मच मेथी का सीड अगर रात को भिगो के छोड़ देते हैं और मॉर्निंग में उन सीड्स का जो जिस पानी में आपने भिगोया उस पानी को छान के फिल्टर करके आप पी लीजिए, तो उसमें भी आपको मेल पैटर्न बॉलनेस में खासतौर में आपको बहुत अच्छा उसमें फ़ायदा मिलेगा। फीमेल्स के केस में एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है अश्वगंधा की। फीमेल्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि उनका नेचर सेंसिटिव रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट सेंसिटिव नेचर होता है, तो ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। तो कई बार ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई बात चुभ जाती है, ज़िंदगी का कोई ऐसा इवेंट दिमाग के अंदर बैठ जाता है जो निकल नहीं पाता। ऐसे केस में रात को सोते वक्त वो बार 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 उसी चीज़ की रिपीटिशन और रूमिनेशन होती रहती है, जिसकी वजह से स्लीप साइकिल सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। स्लीप अगर आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो बॉडी के अंदर जो कैटाबॉलिक या जो बेकार किस्म के हार्मोन हमारे बॉडी रिलीज़ करती है, टॉक्सिन्स रिलीज़ करती है, ब्रेन के ऊपर जो इम्पैक्ट डालते हैं या स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, उनको सिर्फ स्लीप में ही ब्रेन कंज्यूम कर सकता है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और अगर ब्रेन हाइपर एक्टिव रहेगा, पूरी बॉडी को स्टिमुलेट करके रखेगा, फाइट और फ्लाइट वाले मोड में अगर आपके शरीर को रखेगा, तो समझ के चलिए आपकी बॉडी में शांति नहीं रहेगी, आपकी बॉडी में सुकून नहीं रहेगा। और ऐसा अगर नहीं होगा तो बालों के लेवल पे, बालों के रूट लेवल पे जो इन्फ्लेमेशन है कभी कंट्रोल में नहीं आएगी, और इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में नहीं आएगी तो मेडिसिंस बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगी। तो फीमेल्स के केस में मैं एडवाइस करता हूँ, या तो मेलेटोनिन ट्राई कर लें, मेलेटोनिन को लोवेस्ट डोज में ट्राई करना, और मेलेटोनिन की गमीज आ गई हैं अभी मार्केट में जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। 3 मिलीग्राम वाली अगर आपने गमी ले ली है तो उसको आधा हिस्सा उसका चक्कू से काट के उसको मुंह के अंदर रखना है, आपने मुंह के अंदर च्यू करते रहना है, जीभ के नीचे रखना है, उसका रिजल्ट देखिए। 15 से 20 मिनट में आपको हल्का सा हेडेक, हेड हैवीनेस होगी, हेडेक नहीं होगा, हैवीनेस होगी, और नींद वाली साइड चलेंगे, उसका इम्पैक्ट देखिए आपको कैसे लगता है। अगर आप उसका आधा जो गमी है उसको अच्छे से कंज्यूम कर पाते हैं और आपकी नींद हेल्दी होती है, तो अगले दिन आप उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, 3 तक लेके जा सकते हैं, ये कोशिश करिए। नहीं तो अश्वगंधा का इस्तेमाल करिए, आधा चम्मच अश्वगंधा आपने पानी के अंदर मिक्स करके मॉर्निंग में उठते ही ले लेना है, और रात को सोने से 1 घंटा पहले पानी में मिक्स करके फिर ले लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ बताऊंगा, अब आप ये लगेगी बड़ी अटपटी, पर करना आपको बहुत ज़रूरी है। गट ब्रेन, गट हेल्थ के जो कनेक्शंस हैं, पेट के आंतड़ियों के जो कनेक्शन है पूरी बॉडी के साथ, उनके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च हुई है। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी आपको कि अगर आप आपको हल्का सा भी गैस्ट्रिक अपसेट रहता है, कब्जी रहती है या कुछ लूज टूल्स वाली प्रॉब्लम रहती है, तो आप सबसे पहला काम कीजिए इसबगोल का फिक्स कर लीजिए। रोज़ 2 चम्मच पानी में मिक्स करके आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर उसको जो थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप का एक जो लिक्विड बनेगा, मतलब सेमी सॉलिड जैसी कुछ पेस्ट जैसा बन जाएगा, उसको आपने कंज्यूम करना है। आप चम्मच से भी ले सकते हैं, सीधा पी भी सकते हैं। याद रखना है कि नॉर्मल वाटर के साथ लेना है, गर्म पानी के साथ इस सब गोल को नहीं लेना है, अदरवाइज़ वो एकदम से गट को स्टिमुलेट कर देगा। ये चीज़ का ध्यान रखिए। इस सब गोल रेगुलर लेंगे, अश्वगंधा रेगुलर लेंगे, मेलाटोनिन ट्राई करेंगे, तो आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। और रात को अगर नाक में कहीं नेज़ल ब्लॉकेड है तो हल्का सा ओट्रीविन की नेज़ल ड्रॉप डाल सकते हैं या गर्म पानी की स्टीम ले सकते हैं और सिर को ढक के सोएंगे। ज़ुकाम की नज़ले की प्रॉब्लम है तो आपको उसमें बहुत बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, और नींद अगर रिफ्रेशिंग होगी तो आप समझ के चलिए हेयर फॉल के अंदर ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिल जाएगा। अब बात करता हूँ आईटी वाले बच्चों की। जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, आईटी वाले जो बच्चे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या रहती है कि उनका जो सर्कैडियन रिदम है, सर्कैडियन रिदम बोलते हैं हम के सुबह उठना और रात को सोना, जो नेचुरल लाइट है उसके हिसाब से अपनी बॉडी को चलाना, इसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। अगर ये रिदम हमारी बिगड़ गई है, बिगड़ती कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल हम रहते हैं आप इंडिया में पर काम हम यूएसए के हिसाब से कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वहाँ के क्लाइंट के हिसाब से हम सोएंगे जागेंगे तो हमारा सर्कैडियन रिदम उल्टा हो गया, पलट गया। और सर्कैडियन रिदम उल्टा होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि बॉडी को अब ये नहीं पता कि ये सुबह है और ये रात है, तो सुबह वाले हार्मोन जो है वो रात को बॉडी सीक्रेट कर रही है, रात वाले हार्मोन सुबह सीक्रेट कर रही है। तो समझिए जितने भी बॉडी के ऑर्गन सिस्टम है, ब्रेन है, उनकी फंक्शनिंग के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो क्या करना है, हमने थोड़ा सा बॉडी को ट्रिक करना है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो जब भी आप सोएंगे तो जितने भी बाहर के स्टिमुलस हैं, जितने भी बाहर से हमें संदेश मिल रहे हैं सेंसेस के थ्रू, उनको हमने ज़ीरो कर देना है। अगर हम सोते हैं तो आईज़ के ऊपर पैच लगा के सोना, जो फ्लाइट के दौरान हम आईज़ को कवर करके सोते हैं वो ज़रूर लगा के सोइए, ताकि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल रात को 3 बजे 4 बजे सोएं या मान लीजिए सुबह सोएं, तो जो सूरज की लाइट इनडायरेक्टली आपकी आँखों पर पड़ रही है वो ना पड़े, आपके आईज़ को ये स्टिमुलस मिले कि पूरा अंधेरा है, डार्कनेस है, तो अभी मेरे को सोना है। जब डार्कनेस होती है तो मेलाटोनिन रिलीज़ होता है, मेलाटोनिन हमारी बॉडी को नेचुरली संदेश देता है कि अब सोना है और बॉडी को हील करना है। अगर वो लाइट पड़ती रहेगी आँखों के ऊपर तो आप प्रॉपर बॉडी को हील नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है अपने। दूसरा जो ऑडिटरी स्टिमुलस है, कानों के अंदर जो हमारे आवाज़ जाती है वो हमें नहीं जानी चाहिए, तो ईयर प्लग्स आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत पतले पतले ईयर प्लग्स आते हैं फोम के, 3M के आते हैं, वो आप उनको अच्छे से लगाइए। उसका तरीका देखिए एक बार इंटरनेट पे कैसे यूज़ करना है, यूट्यूब पे देख लीजिए, और फिर उन ईयर प्लग्स को कान के अंदर डाल के प्रॉपर वो आपने सोना है। तो ये 2 स्टिमुलस आपके, एक सुनने वाला और देखने वाला, ये आपने बंद कर देने, और इसके बाद आपने नींद लेनी है कम से कम 7 से 8 घंटे की। ये मुश्किल हो जाता है आईटी वाले बंदों के लिए, क्योंकि जब काम करने लगते हैं तो थोड़ा सा टेम्पटेशन ज़्यादा रहती है काम करने की, ओवरवर्क कर जाते हैं। तो 7 घंटे की नींद अगर आप अपने लिए निकाल सकते हैं, 7 से 8 घंटे की, और एक दिन ऐसा ज़रूर निकालिए, फॉर एग्जांपल संडे, तो उस दिन कोशिश करिए 10 घंटे सोने की। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, जिनको दिमाग से ज़्यादा काम लेना पड़ता है, मत्थापच्ची बहुत ज़्यादा है, ब्रेन वर्क बहुत ज़्यादा है, एक बार हफ्ते के अंदर 10 दिन के लिए ज़रूर सो जाइए। ऐसा करने से ओवरऑल आपके सर्कैडियन रिदम बहुत अच्छी रहेगी। देन आ जाते हैं एक लास्ट चीज़ जो जनरल सभी के लिए है, वो है जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बिना आप नहीं सरवाइव कर सकते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की एक ऐसी मशीन, सिर्फ इंसानों को या यूँ कह लीजिए कि सृष्टि में केवल एक ऐसी मशीन है जो कि इंसानी शरीर कह लीजिए, जिसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतना बढ़िया तरीके से काम करेगी, ठीक है। जितना आप इसको ढीला छोड़ देंगे तो बॉडी का एक ही असूल है, यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आप बॉडी को यूज़ नहीं करेंगे तो बॉडी खुद को लूज़ कर देगी, ये नियम है। इसके अनुसार डेली 10 से 15 मिनट की भाग दौड़, जिम जाएं, वेट लिफ्टिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर करें, 40 मिनट के लिए वेट लिफ्टिंग करें, मसल बिल्डिंग करें, स्क्वाटिंग करें, है ना, प्लैंकिंग करिए, आप कुछ भी करिए, बट आप इतना करिए कि आपकी मसल्स जो हैं शरीर के अंदर, मसल का अनुपात पूरा रहे, फैट का कंटेंट थोड़ा कम रहे। और जब भी एरोबिक एक्सरसाइज करें तो कोशिश करें 10 से 15 मिनट इतना एफर्ट लगा देंगे, हार्ट रेट 140 तक आपका पहुंच जाए। पसीना आ जाए आपको, और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो समझिए आपने सर्कुलेशन को अच्छे से अब स्टिमुलेट कर दिया। और जब सर्कुलेशन बहुत अच्छे से स्टिमुलेट होती है तो बॉडी के अंदर फिर जो डिफेंस के जो यूँ समझ लीजिए कि हॉर्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं, और वो आपकी बॉडी को हीलिंग के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा आराम और सुकून दे जाते हैं। जहाँ जहाँ और प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पे भी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट हीलिंग हो जाती है। तो एक्सरसाइज में अगर अपनी बॉडी को स्ट्रेन कर रहे हैं तो जो हीलिंग का मैकेनिज्म बॉडी के अंदर स्टार्ट होएगा मसल्स के लिए, बाकी जोड़ों के लिए, वो आपके बालों को भी कहीं ना कहीं मदद ज़रूर करेगा। आपका इंटेस्टाइन ठीक रहेगा, आपका हाजमा ठीक रहेगा, आपका जो खाना खाते हैं वो प्रॉपर एसिमिलेट हो जाएगा, बॉडी के अंदर अच्छे से पहुंच जाएगा। तो फिज़िकल एक्टिविटी की अहमियत को हम नज़रअंदाज कभी नहीं कर सकते। तो खाना हो गया, स्लीप होगी और फिज़िकल एक्टिविटी होगी, तीन चीज़ें समझ के चलिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आपने अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक आप अंडर ट्रीटमेंट है, हेयर फॉल चल रहा है, आपने हेयर ऑयल इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान से रखिए। मेल हैं या फीमेल हैं, अगर फीमेल हैं, लंबे बाल हैं और आपको बाल रूखे लगते हैं, बहुत कंप्लेंट करती हैं फीमेल्स के बाल रूखे लगते हैं, इसको दो तरीके से टैकल किया जा सकता है। पहला, तो आप नहाने से पहले कोकोनट ऑयल लगाइए, कोकोनट ऑयल लगा के उसको छोड़ दीजिए आधा पौना घंटा, और फिर उसके बाद वॉश कर दीजिए। साइंटिफिकली हालांकि ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा कंसेप्ट है, क्योंकि तेल लगाया आपने, हाइड्रेशन करी, उसके बाद उसको फिर शैम्पू से ख़त्म भी कर दिया, तो बचता नहीं है एक्चुअली तेल बीच में बालों के। दूसरा तरीका ये है कि आप एक इमल्शन तैयार करिए तेल और पानी की, स्प्रे बॉटल में लीजिए, जिसमें कि 70% पानी, 30% ऑयल हो, कोकोनट ऑयल, उसको अच्छे से शेक कर लीजिए, बहुत अच्छे, छोटे छोटे झाग बन जाएगी ऑयल की, उसको बालों की लेंथ के ऊपर स्प्रे कर दीजिए, और फिर हल्का हल्का उनको ब्लो ड्राई करके हाथों से और उसको सुखा लीजिए। ऐसे में जो मॉइस्चर और ऑयल दोनों इकट्ठे बालों के ऊपर लगा रहे हैं तो अंदर ट्रैप हो जाएगा, तो शाइन दिखाई देगी आपको बालों के अंदर। यही एक प्रैक्टिकल तरीका है। इसके अलावा सीरम आ रहे हैं, सिलिकॉन पे बेस बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो थोड़ी देर के लिए काम करती हैं बट इवेंचुअली आपके शेफ्ट को कहीं नुकसान करती हैं। इसके अलावा आप हफ्ते में एक बार, जैसे एग होता है, अंडे को तोड़ के और उसको सीधा स्कैल्प के ऊपर लगाइए, लगा के 15 से 20 मिनट आप छोड़ दीजिए और फिर उसको वॉश कर दीजिए। उसके बाद आप शैम्पू कोशिश करिए कि 6 से 8 घंटे के बाद करें, तब तक जो वो एग का जितना प्रोटीन है वो स्कैल्प के ऊपर कुछ ना कुछ हद के लिए टिका रहेगा, तो वो अंदर हल्का फुल्का आपको न्यूट्रिशन भी दे देगा। तो ये थी दोस्तों जनरल टिप्स। इसके अलावा सीरम कैसे इस्तेमाल करना है, क्या है, वो सब नीचे मैं एक्सप्लेनेशन में दे रहा हूँ, तो प्लीज़ उसको एक बार सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। धन्यवाद, पूरी उम्मीद करता हूँ और आपको, आपके साथ रहेंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे, और हेयर फॉल की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। ओवरऑल अगर आप अपनी सेहत को ठीक कर लेंगे तो हेयर फॉल फिर एक जस्ट एक छोटी सी समस्या अपने आप ही ठीक हो जाएगा। शुक्रिया।